इस कार्यक्रम के सभी पात्र, उनके नाम, स्थान और घटनाएं पूरी तरह से काल्पनिक हैं तथा किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, घटना या स्थान से इनकी समानता एक संयोग मात्र है। हमारा मकसद किसी भी व्यक्ति, धर्म या समुदाय को आहत करना नहीं है। भूत प्रेत और किसी भी अंधविश्वास को हम चैनल या कंपनी धावा नहीं करते और ना ही बढ़ावा देते हैं।
आप सुन रहे हैं कहानी कृष्णकांत के साथ सिर्फ गाना पर।
सुनिए, आप ही क्या, आपको भी यकीन नहीं होता कि मौत के बाद आत्मा की एक और दुनिया है? केविन को भी कभी भरोसा नहीं होता था। उसे हमेशा लगा कि सब एक संयोग है। यू नो, कोइंसिडेंस। पर क्या सच में कोइंसिडेंस ही होता है? क्या आपको कभी कभी नहीं लगा कि अंधेरी रात में आपके साथ कोई चल रहा है? सच में कभी भी सोते समय ऐसा नहीं लगा कि आप उठना चाह रहे हो और किसी के भार से उठ नहीं पा रहे? सच में क्या सच में कभी नहीं लगा कि हल्के से आपके कान में पीछे से किसी ने आवाज दी? नहीं लगा? बेचारा केविन का भी यही हाल था। अच्छा बच्चा था। अरे अभी तक मैंने आपको केविन के बारे में तो बताया ही नहीं। केविन जब छोटा था तो अपने दादाजी के बड़ा करीब था। उसकी दुनिया दादाजी के बाहों के पास ही थी। उसने उन्हीं की नजर से दुनिया देखी जिस चश्मे को दादाजी पहना करते थे। उनकी धोती को ही उसने आसमान का चादर मान लिया और उनकी चप्पल को ही जमीन। दुनिया कैसा सोचती है, कैसा करती है, ये हर एहसास केविन को दादाजी ने ही बताया था। वैसे बड़ा शांत रहता था केविन। उसे दुनिया के तमाम बच्चों जैसा खेलना कूदना कभी नहीं लुभाता था। पर फूल के पास ही भंवरे क्यों आते हैं? हवा ठंडी से क्यों लगती है? और कभी कभी ठंडी हवा हल्की सी गर्म क्यों हो जाती है? ये जानना उसे ज्यादा पसंद था। केविन जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसके अंदर अलग ही शक्ति आने लगी। लोगों की अभी की हालत देख के वो उनके पिछले किए काम को भांप लेता था। आगे आने वाली मुसीबतों को सूंघ लेता था केविन। पर उसकी खोज ये नहीं थी, कुछ और था वो, जो उसे तड़पाई जा रहा था, जो उसे कचोट रहा था। केविन जब 12 साल का था तभी उसके दादाजी का देहांत हो गया। केविन टूट चुका था। ऐसा लगा कि एक लाश शमशान पहुंचाई और दूसरी लाश शमशान से वापस ले आई। 13 दिन तक केविन शांत रहा, पर दादाजी की 13वीं की रात उसके कमरे से उसके हंसने की आवाज आने लगी, जैसे किसी के मजाक पर वो बड़ा खुश हुआ हो। केविन के पिता किशोर उसकी आवाज सुनकर चौंक गए। उन्हें ये बात अटपटी लगी। वो उसके कमरे की तरफ पहुंची और पूछा,
क्या हुआ केविन? तुम ठीक हो ना बेटा? कोई प्रॉब्लम है क्या बेटा?
नो पापा, आई एम फाइन। एक्चुअली दादाजी का एक जोक याद आ गया था और हंसी आ गई।
या बेटा, आई नो तुम उनसे कितना प्यार करते थे, बट दिस इज लाइफ बेटा। हर किसी को उस दुनिया में जाना है जहाँ से लौट के फिर कोई आ नहीं पाता।
क्या सच में कोई नहीं आता?
अब माइथोलॉजी की मानोगे तो आत्मा नया शरीर जरूर लेती है, लेकिन फैक्ट ये भी है कि अगर आत्मा नया शरीर ले भी ले तो भी हमें हमारे लोग तो नहीं मिलते हैं ना बेटा। रूह अपना नया ठिकाना तलाश लेती है।
पापा, दादाजी अक्सर कहते थे कि he has the power of talking to the dead people. उन्होंने कई बार रूह से बात भी की थी।
हाँ, और इसीलिए लोग तुम्हारे दादाजी को पागल समझते थे और हम उनसे दूर रहते थे। केविन, ये तो उनकी जिद थी और तुम्हारी खुशी, इसलिए हमने तुम्हें उनके पास रहने दिया। अदरवाइज उस इंसान में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसकी वजह से उनसे मोहब्बत की जाए। आर यू गेटिंग मी? ये आवाज कैसे?
आई गेस हवा ज्यादा है बाहर, मैं खिड़की बंद कर देता हूँ।
हाँ, देखो तुम सो जाओ बेटा, हाँ? और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता देना, मैं नीचे ही हूँ।
केविन अब 18 साल का हो चुका था। उसकी मुलाकात रूहों से बढ़ने लगी थी। वो अब तक ये जान चुका था कि कुछ तो है जो इंसान और उसकी समझ के बीच भंवर की तरह फंसा हुआ है। कुछ तो है जो इस दुनिया का नहीं, कुछ तो है जो डरावना है, लेकिन उसको जानना भी जरूरी है। ऐसी ही उलझन में फंसा हुआ केविन एक रोज एक सुनसान रास्ते से गुजरा। उसे किसी खास लकड़ी की जरूरत थी जो उसे उसके दादाजी बताया करते थे कि रूहों से बात करने में सक्षम है। रास्ते से गुजरते हुए उसे यूं लगा कि किसी के पीछे चलने की आवाज आ रही है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। ये कोई औरत है, क्योंकि उसके पायल की झनकार थी। पर केविन ने पलट के नहीं देखा, क्योंकि उसके दादाजी की कही एक बात उसे हमेशा याद रहती थी कि आत्मा जब भी कोई इशारा दे उसे पीछे नहीं मुड़ना चाहिए, बल्कि रास्ता बना के उसके सामने आना चाहिए। इसे आत्मा तुमको तुरंत नुकसान नहीं पहुंचाती। केविन कश्मकश में था, क्या ये सच में आत्मा है या कोई औरत मेरा पीछा कर रही है? केविन ने एक इमली के पेड़ के चक्कर को काटा और उल्टी तरफ आ गया। यहां देखा तो कोई भी पीछे नहीं था। केविन आत्मा से डरता नहीं था, पर यहां डर की वजह थी। केविन की जगह कोई भी होता तो उसकी मौत शायद इस खौफ से हो जाती कि आखिर वो कौन थी। पर केविन ने आवाज लगा के पूछा,
कौन है, कौन है, कौन है?
और तभी वहां झाड़ियों के पीछे से रोने की आवाज आती है। केविन वहां तक पहुंचता है और देखता है वहां तो कोई भी नहीं।
कौन है? क्या किसी को मेरी मदद चाहिए?
तभी अचानक से सामने के पेड़ में एक डरावनी सी शक्ल उभर कर आती है और उसके दांत केविन की तरफ बढ़ते हैं, जैसे वह उसका मुंह मोचना चाह रही हो। और फिर एक आवाज आती है,
तो करेगा मदद? यहाँ दोबारा मत आना।
दरअसल ये आवाज केविन से आ रही थी। इसके बाद केविन वहीं पर गिर पड़ा। फिर न जाने किस तरह अपने घर पहुंचा। जब सुबह हुई तो उस दिन के बाद से 2 दिन तक केविन को बुखार रहा। ब्रू से मिलने का ये भी एक इशारा है, अचानक से तबीयत का बिगड़ जाना। केविन अब 25 साल का हो चुका था। कई बार ब्रू से बात कर चुका था, कई बार खुद को परेशान कर चुका था, कई बार अपने सिक्के से सवाल कर चुका था, कई बार किसी रहस्य को जानने में खुद को खो चुका था। पर अब इतने दिनों में कुछ तो था जो केविन के साथ हमेशा होने लगा था। दरअसल उसके शरीर पे अचानक से कुछ नीले निशान पड़ जाते थे, जैसे किसी ने उसे मारा हो, पर उसे कभी याद नहीं रहता था। ऐसा कब हुआ, क्यों हुआ? केविन के साथ कई रहस्य बढ़ते जा रहे थे। ऐसे ही एक दिन केविन घबरा गया। असल में वो किताब पढ़ रहा था जिससे उसे रूह की हकीकत समझने में आसानी हो। वो पन्नों में कुछ तंत्र में पढ़ रहा था कि चुड़ैल और आत्मा में क्या फर्क है, कैसे किसके पैर उल्टे होते हैं, उनको पसीना आता है, उन्हें चबाने की आदत होती है। और केविन उन किताबों के पन्नों में खोया था, तभी उसे लगा पीछे से कुछ आ रहा है और वो झुका। एक कांच का गिलास उड़ता हुआ आया और सर के पीछे से होता हुआ सामने की कुर्सी से टकरा गया।
आप सुन रहे हैं कहानी रोकी, कृष्णकांत के साथ सिर्फ गाना पर।
केविन झुक गया था इसलिए बच गया, पर तुरंत ही उसके हाथ में वो रखी किताब में आग लग गई। केविन घबरा चुका था। वो एक बात समझ चुका था कि किताब पढ़ने से रूहों का अंदाजा नहीं होगा, उसे जानना होगा, क्योंकि उसने पढ़ा था कि रूह आग के करीब नहीं जाती और पानी में उसकी ताकत बढ़ती है। पर यहां सब उल्टा हो रहा था। वक्त गुजरता गया। केविन अपने सांसों और ख्यालों की दुनिया में बड़ा हो चुका था। अब तक केविन पूरा अकेला हो चुका था। कुछ साल पहले ही उसकी माँ की मौत हो गई और 2 साल पहले उसके पिता की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। केविन ने अकेलेपन से कुछ गहरी सी दोस्ती कर ली है। दोस्त के नाम पे उसका कोई नहीं, बस एक सिक्का है जिसको उछाल के बस हेड टेल करके वो फैसले ले लेता है। पड़ोसियों की नजर अक्सर उसके ऊपर होती है। कुछ लोग कहते हैं कि वो तांत्रिक है और कुछ कहते हैं कि अकेलेपन में वो पागल हो चुका है। आइए केविन से मिलवाता हूं। वो अपने कमरे में अकेला है। 1 मिनट, मेरा मतलब इंसान अकेला है, साथ में उसके दादाजी की आत्मा भी तो है जिससे वो लगातार 13वीं के बाद से बातें करता आया है।
नहीं, आपको आपको ये नहीं करना था। आप कैसे कर सकते हैं ये? दादाजी, मैं तो हमेशा से आपका ही था। मैंने हर काम वो किया जो आपको पसंद था, फिर क्यों दादाजी? देखिए दादाजी,
केविन मुझे मत भेजो।
नहीं नहीं नहीं, अब आपको जाना होगा। आई कमांड योर सोल टू गो टू हेवन दादाजी, लीव दिस प्लेस प्लीज।
नहीं नहीं, केविन केविन मुझे मत भेजो।
आखिरकार केविन अपने दादाजी की आत्मा को भेजने में कामयाब रहा, पर अभी भी उसके जहन में कुछ सवाल बाकी थे जिनकी तलाश उसे करनी ही होगी। लोग जान चुके हैं कि केविन में ताकत है आत्माओं से बात करने की, सबको तलाश है केविन से मदद की, पर क्या उसमें सच में इतनी ताकत है कि वो कुछ सिद्धि आत्माओं को भेज सके वापस उस दुनिया में जहां वो रहना नहीं चाह रही। उस दादाजी को केविन ने वापस क्यों भेज दिया जिसके लिए वो पागल था, जिसके साथ के बिना वो अधूरा था। अधूरे तो ये कहानी भी है, हर कहानी को सुनाऊंगा, अगली बार बताऊंगा कि जूही की आत्मा को कैसे शांत किया केविन ने। आखिर कौन थी ये जूही जो दस्तक दे रही थी केविन के दरवाजे पर? हर कहानी को सुनाऊंगा, जब आप सुनेंगे कहानी रोकिए। मेरे यानी कृष्णकांत के साथ
आप सुन रहे हैं कहानी रोकी, कृष्णकांत के साथ सिर्फ गाना पर।
कहानी रोकी क्रिएटेड बाय तारिक अहमद।